प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरे महीने बढ़ाए नकद दर। स्टेट इमरजेंसी सर्विस कमिश्नर ने न्यू साउथ वेल्स बाढ़ आपातकाल के दौरान एक नकली बचाव कॉल की निंदा। और क्रिकेट में इंग्लैंड और भारत के बीच एक क्रिकेट टेस्ट मैच में नस्लवादी दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच। अब समाचार विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स में बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। ये गंभीर मौसम हंटर क्षेत्र और राज्य के मध्य उत्तरी तट की ओर बढ़ रहा है। हजारों लोग निकासी आदेशों की दिशा में काम कर रहे हैं और उन्हें बाढ़ के खतरों या भयानक मौसम में अलग थलग होने के जोखिम वाले क्षेत्र को छोड़ना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इस सप्ताह मंगलवार और बुधवार को और अधिक बारिश से मध्य उत्तरी तट पर नदियां प्रभावित हो सकती हैं और लगभग 100 ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल के सदस्यों को भी हंटर क्षेत्र में मदद करने के लिए पहुंचना चाहिए। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे ने चेतावनी दी है कि स्थानीय समुदायों के लिए बाढ़ का आपातकाल अभी खत्म नहीं हुआ है।
More heavy rainfall to continue over the course of the week. We will see more rain moving north in the Hunter today, and then that into tonight will move to the mid north coast. So this event is far from over. Please don't be complacent wherever you are. Please be careful.
राज्य आपातकालीन सेवा आयुक्त कार्लिन यॉर्क ने बताया कि स्वयं सेवकों को एक फर्जी कॉल का जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा जब किसी ने छत पर जाकर बचाव की जरूरत होने का नाटक किया था। उन्होंने उस व्यक्ति के व्यवहार की निंदा की और लोगों से समुदाय की रक्षा के लिए स्वयंसेवकों और आपातकालीन उत्तरदाताओं के जोखिमों का सम्मान करने का आह्वान किया।
But what happens is because it's to try and save a life, we target our resources and try and get out there to save that person, and it means we take them away from other areas. And we really had a lot of calls for assistance last night that were really important. So I call for the community. It was only one matter. Most of the community has been really good, but it just puts our emergency services at risk of not being able to save those who really need it.
फेडरल सरकार इस सप्ताह के अंत में प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद करने के लिए न्यू साउथ वेल्स से और अधिक अनुरोध आने की उम्मीद कर रही है। एंथनी अल्बनीजी आज बाद में कैनबरा पहुंचने वाले हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लस ने 9 नेटवर्क को बताया कि प्रधानमंत्री को बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी दी गई थी और वो गुरुवार को इस क्षेत्र का दौरा कर सकते हैं।
Well, I mean, obviously this hadn't happened before he left, but I also know that as soon as Anthony was in a position to make contact, he did, and he'll be on the ground here later in the week.
Nine Network से बात करते हुए National Leader David Littleproud ने एक आपदा के दौरान विदेश में रहने के लिए प्रधानमंत्री पर आलोचना की। श्री Littleproud ने ये भी स्वीकार किया कि स्कॉट मॉरिसन जब गर्मियों में बुश फायर के दौरान हवाई में थे, इस बात से वो सीधी तुलना नहीं कर रहे थे।
But there's a difference between speaking it as a media blackout and whether you can pick a phone up. That's and whether that puts you in harm's way. And I think we want to be fair and equitable on this, but you can't have your cake and eat it too. They're pretty quick to throw a few grenades at Scott Morrison. Yes, he was on holidays. While they sat there and threw barbs at us, they're doing exactly what we did.
रिजर्व बैंक ने आज दोपहर नकद दर को 0.85% से बढ़ाकर 1.35% कर दिया है। महंगाई के बढ़ते स्तर के बीच मकान मालिक ब्याज दरों में बढ़ोतरी की तैयारी कर रहे हैं। आरबीए द्वारा अपनी मासिक बोर्ड बैठक आयोजित करने के बाद ये नकद दर में लगातार तीसरी वृद्धि है। आरबीए के गवर्नर फिलिप लोक का कहना है कि ये कोरोना वायरस महामारी के दौरान प्रदान की गई आर्थिक सहायता को वापस लेने की दिशा में एक और कदम है। उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि बोर्ड आने वाले महीनों में और कदम उठाएगा। न्यू साउथ वेल्स सरकार लोगों से टीकाकरण में अपना सहयोग बढ़ाने और कोरोना वायरस के खिलाफ तीसरी खुराक लेने का आग्रह कर रही है। राज्य के नवीनतम स्वास्थ्य आंकड़ों से पता चलता है कि केवल 68% आबादी ने 3 टीके लिए हैं, जबकि पिछले दिनों कोविड-19 से 14 लोगों की जान चली गई है। विशेषज्ञ ये भी तौल रहे हैं कि क्या चौथे जैब की सिफारिश की जानी चाहिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मामलों की बढ़ती संख्या और अधिक कोविड-19 वेरिएंट का अनुभव हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ब्रैड हैजर्ड ने कहा कि कुछ निवासियों का मानना है कि कोविड-19 महामारी खत्म हो गई है और उन्हें लगता है कि उन्हें पूरी तरह से टीका लगाया गया है, लेकिन फिर भी उन्हें एक और खुराक की जरूरत है।
Ask your mates, have you had the full dose? Because if you do, you're going to be a lot safer. You're going to have far less likelihood of getting really ill and far less likelihood of dying. And that's, I think, true mateship in Australia during a pandemic. That's what we need to do.
साउथ ऑस्ट्रेलिया रूस के साथ अपने संघर्ष में देश का समर्थन करने के प्रयास में यूक्रेन को 70 डिफिब्रिलेटर भेज रहा है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा बल अगले कुछ हफ्तों में मशीनों की डिलीवरी करेगा और उन्हें कई फील्ड अस्पतालों में भेजा जाएगा। राज्य सरकार का कहना है कि वे इस अद्वितीय संकट के दौरान यूक्रेन और उसके लोगों के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। घायल नागरिकों की बेहतर सहायता के लिए राज्य यूक्रेन के लिए चिकित्सा आपूर्ति के 5 पैलेट भी प्रदान करेगा। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन मंगलवार को मेलबर्न में एक भाषण के बाद जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में स्थिरता के लिए व्यापार क्षेत्र पर जोर दे रही हैं। प्रधानमंत्री आर्डन ने हाल ही में यूरोपियन यूनियन के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए और कहा कि आज की घटना जलवायु परिवर्तन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों के लिए सबसे अधिक दबाव वाले मुद्दों में से एक है। वे कहती है कि दुनिया कोरोना वायरस से उबरने के लिए एक साझा अनुभव से गुजर रही है, जिसमें कई लोग केवल जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति जाग रहे हैं।
Now our governments cannot solve these challenges alone. We can only succeed by working in partnership with you and your businesses. But thankfully, of course, as governments, we do need to do our part. Both our countries are setting very ambitious goals.
हाईलैंड पार्क के शिकागो उपनगर में 4 जुलाई की परेड में एक शक्तिशाली राइफल से एक व्यक्ति द्वारा छत से की गई गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 2 दर्जन घायल हो गए। इस घातक घटना ने नागरिकों की देशभक्ति के प्रदर्शन को आतंकित तबाही के दृश्य में बदल दिया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने एक 22-वर्षीय पुरुष रॉबर्ट इक्राइमो तीसरे को हिरासत में ले लिया है। गन वॉयलेंस आर्काइव के आंकड़ों के अनुसार हाईलैंड पार्क में हुई ये गोलीबारी इस साल अमेरिका में हुई कम से कम 308वीं सामूहिक गोलीबारी है। ये संगठन एक सामूहिक शूटिंग को परिभाषित करता है जिसमें 4 या अधिक लोगों को शामिल किया गया है, जिसमें शूटर शामिल नहीं है। जुलाई के पहले 4 दिनों में ऐसी 11 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 3 अकेले 4 जुलाई को हुई हैं। गवर्नर जेबी प्रिट्जकर का कहना है कि उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की है और ये भावनात्मक संदेश जारी किया है।
I'm furious that yet more innocent lives were taken by gun violence. I'm furious that their loved ones are forever broken by what took place today. I'm furious that children and their families have been traumatized. I'm furious that this is happening in communities all across Illinois and America. I'm furious because it does not have to be this way. This madness must stop.
और अब खबरें भारत से। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में हालात काफी खराब होते जा रहे हैं। मुंबई और उसके उपनगरों में बीती रात और आज सुबह हुई बारिश ने शहर के कुछ हिस्सों में पानी भर गया है। हालांकि ट्रेनें अपने निर्धारित समय के अनुसार सामान्य रूप से चल रही हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को प्रभावित जिलों में पहुंचकर देखरेख कर हालात को काबू में लाने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर भारत में पिछले 24 घंटों में 16,135 नए कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। इस अवधि में कोविड-19 से 24 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब जानेंगे डॉलर का हाल। मुद्रा दर की जानकारी में इस रिपोर्ट के आ जाने तक अमेरिका में 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत आज 69 सेंट्स है और भारत में 1 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 54.35 रुपये हो गई है। अब समाचार खेल जगत से। एच बास्टन में इंग्लैंड और भारत के बीच पांचवें क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन भीड़ के बीच नस्लवादी दुर्व्यवहार के आरोपों की जांच चल रही है। बर्मिंघम के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि वे दर्शकों के भेदभावपूर्ण भाषा के सोशल मीडिया पर किए गए दावों पर गौर कर रहे हैं। एच बास्टन के सीईओ स्टुअर्ट कैन ने कहा कि वे बेहद निराश हैं क्योंकि वे एच बास्टन को एक सुरक्षित स्वागत योग्य वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत आर्मी आधिकारिक भारत समर्थकों के समूह ने बाद में बताया कि मैदान पर उनके कुछ सदस्यों को निशाना बनाया गया था। कुछ ही दिन पहले उन्होंने इंग्लैंड में अपने टीम का समर्थन करने के लिए अपना उत्साह साझा किया था।
Very, very excited. We've been excited for this test for ages, for a long time, for a year. We've been waiting one year for this test match to happen. We were so upset when it was delayed, but we're back again, supporting our boys 100% all the way.
और अब कल के मौसम का पूर्वानुमान। पर्थ में आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 7 और अधिकतम तापमान 19 डिग्री तक रहेगा। एडलेड में भी आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 3 और अधिकतम तापमान 14 डिग्री रहेगा। मेलबर्न में ज्यादातर धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 3 और अधिकतम तापमान 15 डिग्री रहेगा। कैनबेरा में बादल छाए रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 2 और अधिकतम तापमान 14 डिग्री रहेगा। सिडनी में बारिश रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान 13 और अधिकतम तापमान 19 डिग्री रहेगा। ब्रिस्बेन में 1 या 2 बौछार की संभावना है और वहां का न्यूनतम तापमान 12 और अधिकतम तापमान 21 डिग्री तक रहेगा। डार्विन में धूप खिली रहेगी और वहां का न्यूनतम तापमान रहेगा 14 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री। और वहां भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल आंशिक बादल रहेंगे और वहां का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहेगा। मौसम की जानकारी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। धन्यवाद।